ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उनसे उनके कारोबार के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिला शक्ति ने हमेशा समाज और देश के भविष्य के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए उन सभी क्षेत्रों को खोलने की दिशा में काम कर रही है जो कभी उनके लिए प्रतिबंधित थे। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा उनकी सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य अपराध है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक समाज और एक सरकार के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के जीवन और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। प्रधानमंत्री कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए देश में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में काफी ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में वैश्विक व्यापार नेताओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश मुद्दों पर चर्चा की है। श्री पीयूष गोयल सिंगापुर में आज होने वाले दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया और तमाम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज होने वाले दूसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री का स्वागत सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के उच्चायुक्त साइमन वोंग और सिंगापुर में भारत की उप उच्चायुक्त पूजा टिल्लू ने किया। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्य आरोपी और एकमात्र गिरफ्तार व्यक्ति संजय रॉय का कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सीबीआई की टीम इस उद्देश्य से कल प्रेसिडेंसी सुधार गृह पहुंची और 4 घंटे बाद बाहर आई। इससे पहले जांच टीम ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नई दिल्ली के मनोवैज्ञानिकों और व्यवहार विशेषज्ञों के सामने संजय से पूछताछ की। इस बीच आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक बुलबुल मुखर्जी, कोलकाता पुलिस की होमिसाइड शाखा के सदस्य और विशेष जांच दल और आरजीकर चौकी के प्रभारी से भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेक में पूछताछ की गई। जांच टीम कल आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ संदीप घोष के करीबी सहयोगी चंदन लोहा के आवास पर पहुंची। लोहा की पत्नी आरजीकर में एक कॉफी शॉप चलाती है। आरोप है कि दुकान अवैध है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में सीबीआई ने कल सुबह 15 स्थानों का दौरा किया। सीबीआई की एक टीम ने डॉ संदीप घोष से उनके आवास पर पूछताछ की। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है जो 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें निजी कोच मिलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।